ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تدبر القرآن کے سلسلے میں آج ہم سورة المطففین پر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے یہ ایک تفسیر نہیں ہے صرف ایک سوچنے کا انداز ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک پارے میں کتنے مختلف موضوعات کو ہمارے سامنے لاتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بنیادی چیز عقیدہ آخرت ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو وہاں جا کر ہم کہاں ہوں گے آج جو صورت ہے بہت ہی ایک عجیب سے اچھوتے سے ٹاپک پہ ہے نام کیا ہے المطففین کمی بیشی کرنے والے بہت ٹپیکل اردو میں کہیں تو ڈنڈی مارنے والے یعنی اپنے حقوق لیتے وقت تو بہت تیز لیکن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے بہت کیئرلیس اور بہت تھوڑا سا فرق کر پاتے ہیں لیکن ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے پہلی ہی آیت میں لفظ ویل للمطففین سے اس کا نام ہے اور اس کے صورت کے اندر جب دیکھا جائے بنیادی طور پہ تو یہ بھی کفار مکہ کے ذہنوں میں آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے کی بات تھی لیکن آخری آیتیں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب غریب مسلمان اور سیدھے سادھے لوگ جب دین پہ آ جاتے تھے تو ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتے تھے اس کا اس میں تذکرہ بھی ہے بعض کہتے ہیں یہ مدنی ہے لیکن مدنیوں کے مکیوں میرے آپ کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے بلکہ اس صورت پہ میں نے کسی کا کمنٹ پڑھا تھا وہ یاد آ گیا کہ جب قرآن خود نہیں پڑھا تھا تو صورت مطففین پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تاجروں کے لیے ہمارا آپ کا اس سے کیا تعلق ہے صورت مائدہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کرسچنز کی باتیں اور صورت بکرا کا یہ تو یہود کی یعنی یہ قرآن ہمیں اپنا نہیں لگتا تھا لیکن حقیقت ہے کہ یہ قرآن ہمارا اپنا ہے تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بنیادی طور پہ اس میں بھی موضوع آخرت ہی ہے پہلی چھ آیتوں میں انسانی معاملات میں کمی بیشی کرنے کی طرف بات ملے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنت کے بڑے خوبصورت یہاں مناظر بھی دیکھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے تھوڑے سے ڈی گریڈڈ ہو بھی گئے جن کو اپنا مقام تھوڑا سا نیچے ہوتا دکھ بھی گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالکل وہی چیز ایز اٹ از پیش کریں گے جو دنیا میں ان سے چھن گئی تھی آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ڈنڈی مارنے سے کیا مطلب ہے کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کون ہوتے ہیں وہ لوگ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں یعنی جب لینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ لیتے ہیں حقوق کے نام پہ بھی اور رائٹس کے نام پر بھی لیتے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں یعنی لینے کے بات اور ہیں تو دینے کے اور ہیں گویا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں یا دوسروں کے لیے جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کیا ہوگا ان کا الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں لفظ بڑے دن پہ غور کیجیے گا हकीकत है कि वैसे तो 22 जून गालिबन सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन क़्यामत यौमन अजीम भी है हर लिहाज से, मुकाम और मरतबे के अतबार से, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अतबार से भी। और कुरान से हमें पता चलता है कि 50,000 साल 50,000 ईयर्स के बराबर एक दिन होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो बड़ा लंबा दिन है जिसके अंदर इनको खड़ा किया जाएगा। तो ये नहीं सोचते कि इस तरह की हक तलफियाँ करने से इनको उस बड़े दिन में कितनी मुश्किल होगी। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। इमेजिन करें ज़रा, एक बहुत बड़ी अदालत है, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैयुन, उसकी तो मिसाल की भी कोई मिसाल नहीं, उसकी क्या होगी। लेकिन ज़रा जहन में लाइए, लोग खड़े हैं, यौम यकूमुन नास, यहाँ जुमला नोट कर लें, क़्यामत को क़्यामत कहते ही इसलिए हैं कि उस दिन सब खड़े होंगे। अगर सिर्फ इस 1 घंटे के लिए आप में से सब कुछ लोगों को कह दिया जाए कि पीछे खड़े होके सुन लें, या चलिए ऐसा करते हैं इधर से कुर्सियाँ उठवा ही देते हैं और मैं भी खड़े होके बोलूँ और आप भी, थोड़ी देर शायद हम इंजॉय करें, फिर हम थक जाएंगे। रात का क़्याम भी तो इसीलिए मुश्किल लगता है, ईशा भी इसीलिए मुश्किल लगती है, एक लंबी होती है। हाँ, एयरपोर्ट पे कोई अपना प्यारा आया हो तो उसको लेने के लिए शौक से 3-4 घंटे खड़े रहते हैं, वक्त से पहले भी चले जाते हैं, कहते हैं नहीं क्या पता वो जल्दी आ गए तो क्या होगा। लेकिन क़्यामत के दिन यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और खड़े भी किसके सामने, जो रब्बुल आलमीन है, और रब वो है जिसने बचपन से बड़ा किया, ज़र्रे से कमाल तक पहुँचाया आपको मुझे, जिसने कुछ ना से कुछ कर दिया, उसके सामने खड़े होंगे। ज़रा सा इस पे गौर करते हैं फिर आगे चलते हैं। बज़ाहर आप देख रहे हैं कि आयत बहुत क्लियर है, कमी बेशी करने वाले, आप कहेंगे हाँ हाँ वो फलां बाबा था ना तो वो सब्ज़ी कम तोल के देता था, और वो फलां पठान था ना और हम घर आके कपड़ा नापते थे तो आधा मीटर में से कुछ ना कुछ कमी होता था। अमूमन इस आयत को पढ़ने के बाद जहन में ताजिर या सौदा बेचने वाले आते हैं, और लफ्ज़ जो मुतफ़िफ़ीन तत्तफ़ीफ़ से है, बहुत थोड़ी सी चीज़ ले लेना, आमतौर पे तो नाप तोल में ही थोड़ी सी चीज़ होती है, और थोड़ी क्यों, किलो में से कितना लेंगे, आधा किलो तो नहीं कोई ले सकता ना। याद रखिए अगर इसको बिल्कुल इसकी असल मानी में भी लिया जाए ना तो ये फिर भी बहुत बुरी बात है। कुरान पाक में जगह जगह नाप तोल की कमी को मेंशन भी किया गया और कहा कि ऐसा करने वाले क़्यामत के दिन हिसाब देंगे और पता चलेगा। सूरत बनी इसराइल में भी आता है, जब तोलो तो पूरा तोलो, सही तराजू से तोलो, आयत 35 में आता है। इसी तरह सूरत रहमान में भी इसका तस्करा बहुत सारी जगह पे है। आप देखिए कि कितना को कोई ले जाता है ना, मसलन आप देखिए आधा किलो मिर्चें, उसमें 1 छटांक कम होगा, 1 10 ग्राम कम कर देगा कोई 100 ग्राम में से, 10 भी नहीं कर सकता, पकड़ा जाएगा। और यहाँ मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था, एक शख्स शहर से गाँव जाता और गाँव वाले से मक्खन या बटर या दही, देसी घी जो भी कह लें, खरीद लेता और ख़ुद उसको पैसे देने की बजाय उसके बदले में अपनी दुकान के सौदे में से कोई चीज़ देता, यानी जैसे ट्रेडिंग होती है ना, चीज़ों का बदला चीज़ होती थी। अब वो वहाँ से घी का 1 किलो का पैकेट पकड़ता तो उसको दाल का 1 किलो का पैकेट दे आता। एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं ज़रा देखूँ कि ये जो मैं सीधे सादे आदमी से घी लेकर आता हूँ तो ये वाकई किलो होता भी है कि नहीं। उसने जाकर उस दिन तराजू पे रख दिया, जब तराजू पे रखा एकदम उसको गुस्सा आ गया, अरे ये क्या फलां 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 ऐसा बुरा, देखो मैं तो इस पे एतमाद करता था, पता क्या चला कि उस 1 किलो में से वजन कम था। कहा अच्छा चलो ठीक है मैं इसको देखता हूँ। 2-3 दफ़ा देखा, हर दफ़ा उसको वजन कम दिखा। अब उसको बहुत गुस्सा आया, पहुँच गया उस गवाले के पास, कहने लगा बात सुनो, तुम मुझे धोखा देते हो कि तुम मुझे हर महीने हर दफ़ा 1 किलो की बजाय कम दे रहे हो। तो वो जो देहाती था अब उसकी बात सुनिएगा, कहता है भाई हम सीधे साधे लोग हैं, हमारे पास तराजू तो होती कोई नहीं, जो मैं आपसे दाल का पैकेट लेता था ना उसको मैं तराजू में रख कर उतना घी आपको दे देता था, समझ आया आपको, असल में ये भी कम सौदा देता था, वो इसी के वजन पे जाके तोलता था, तो कसूर किसका था, इसका था ना। ज़िंदगी में याद रखिए बहुत जगह हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं लेकिन कसूर हमारा अपना होता है। ऐसी तमाम हेरा फेरियाँ क़्यामत के दिन इंसान के लिए रुसवाई का ज़रिया होंगी, और बस दफ़ा तो इंसान इतनी छोटी छोटी हेरा फेरियाँ करता है कि खैरत होती है। अब इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक लिस्ट तैयार करती हूँ, हम खुद सब देखेंगे कि ऐसा कहीं हमारी ज़िंदगी में तो नहीं हो रहा। और इस वक्त आप भी अपने आप को सोचिए कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितना कोई साइट को डेप्थ में ले जा सकते हैं। मसलन चीज़ें तोलना, चलिए मेयरमेंट ये भी कह सकते हैं, लीटर्स है तो लीक्वर्स को तोलना, यानी मोस्टली हम ऐसी चीज़ों को बेजान चीज़ों के साथ तोलते हैं। लेकिन हकीकत ये है, इंसान ज़िंदगी में हर मामले में और हर एक के साथ तदफीफ़ कर सकता है, हक पूरा नहीं देता। कैसे? चलिए, नंबर एक, सबसे पहले आपका मेरा मामला किससे है? अल्लाह ताला से। सबसे पहली कमी बेशी इंसान अल्लाह के हक में करता है। अगर कहीं भी दिल के अंदर छुपा हुआ कोई शिर्क का हल्का सा भी शायबा है ना, कि अल्लाह भी देता है लेकिन वो बाबा जी भी दे ही देते हैं, और रोज़ तो अल्लाह से मांग लो किसी एक ख़ास दिन पे जाकर किसी कब्र पे खड़े होकर बाबा जी को भी ज़रा सी तकलीफ़ दो, तो याद रखिए ये अल्लाह के हक में कमी है। शिर्क जुल्म है, और जुल्म कहते हैं हक में कमी। वद्दु शैयन फी गैरी महल्ली ही, किसी चीज़ को उसकी गैर मुनासिब जगह पर रखना। अल्लाह के मामले में तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कोई एक और चीज़ भी देखते हैं। अल्लाह ने आपको मुझे क्या कहा? अल्लाह ताला को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सच्ची जो बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए दिन में 5 दफ़ा हमें बुलाया, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये असल में मुलाकात थी, विजिट्स होती हैं हमारी अल्लाह ताला के साथ, मीटिंग्स हैं, होते हैं। पर हम कितनी पढ़ते हैं? अगर 5 में से 1 छोड़ी तो ये तदफीफ है अल्लाह के हक में। कहते मुँह से या का ना बदू, लेकिन पूरी नहीं करते। चलिए 5 तो पढ़ ही लेते हैं, फिर वो जो पढ़ते हैं उसमें क्या कमी है? रकू में कमी, सजदे में कमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो वो नमाज़ पढ़ा था, तो रुकू में, जैसे आप मेरे हाथ से देखिए कि ये अगर एक इंसान है तो वो कैसे खड़ा रहा? यूँ ऐसे खड़ा होना चाहिए ना, 90 का एंगल, कि आपकी बैक इतनी स्ट्रेट हो ऐसे कि अगर ऊपर कुछ रख भी दें तो गिरे ना, बिल्कुल झुकना भी नहीं और ऐसा भी नहीं है। रुकू से उठा तो सजदे में गया, और अभी एक सजदे से पूरा सीधा हुआ ही नहीं जो हुक्म है तो दूसरे सजदे में चला गया। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के सलाम फेरी, आपने फरमाया ये तेरी नमाज में तदफीफ है। नमाज में से वही कबूल है, मा हज़र फीही कल्बुक, हदीस के अल्फाज हैं, जिसमें तेरा दिल हाजिर हो। चलिए तो फिर तीसरी चीज, नमाज का हर वो लम्हा जिसमें ध्यान कहीं और चला गया, चाबी किधर रखी है, घर जाके पकाना क्या है। सच बताएं भूली बिसरी बातें नमाज में नहीं याद आती, तो फिर नमाजों की कमी बेशी। वजू करने में डंडी मार जाते हैं, अब कौन वजू करे? हाँ हाँ मेरा वजू था, अच्छा चलो अब इतना जोर, कितनी सर्दी है, ये क्या है, कोनियाँ सूखी रह गई, टखने सूखे रह गए, ये नमाज की कमी है। 5 पूरी नहीं की तो पूरी ना पढ़ी। फिर उसके बाद देखिए रोज़े, सिर्फ साल के 30 या 29, क्या मैंने पिछले साल के रोज़ों में कोई तदफीफ तो नहीं की? अल्लाह के हुक्म से कुछ छुटे तो क्या मैंने अब तक पूरे कर लिए? नहीं किए तो कर लीजिए, ये बेहतरीन दिन है रोज़े रखने के। सर्दियों के दिन हमारे असलाफ को बड़े प्यारे लगते थे, कहते थे कि दिन का रोज़ा छोटा सा और रात लंबी, सो सो के भी उठ जाए तो क्याम कर लो। ये तो वो दिन है जिसके लिए ईमान वाला तरसता है। आमतौर पर अब देखिए गर्मियों में ऑपोजिट हो जाता है ना, तो तब फ़र्ज तो रखे, तो किसी के भी छुटे हुए रोज़े हैं तो उसको पूरा कीजिए। नियत कर ली किसी अच्छे काम की, रमज़ान में कुरान सुना, उस वक्त इतनी नियतें कर ली, ये भी करूँगी वो भी करूँगी, बस वो ईद की पार्टियों की नज़र सब कुछ हो गया। ख़ुद से किए हुए वादे और अल्लाह के नाम पे किए हुए वादे, नियतें, इरादे, बस अब मैं ये शुरू करूँगी, अब मैं क्लास शुरू करूँगी, अब मैं ये करूँगी, कितने वादे किए, कितनी अच्छे अच्छे कामों की नियतें की, छूट गई। चलिए आप इसको सोचेंगे ना, आपको हर काम में कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। हज पे जाते हैं कितनी कमियां हो जाती हैं, उम्रे पे जाते हैं कितनी कमी बेशी हो जाती है। कहने का मकसद यह है कि अगर दीन की कोई क्लास भी ले रहे हैं तो उसमें तदफीफ क्या है? आज नहीं जाते, मुश्किल है, मौसम ख़राब है, दुनिया में तो ऐसे कभी नहीं करते। खैर इसको आप सोचिएगा, लेकिन मैं आपको इससे भी नीचे ले जाऊँ जो सबसे ख़तरनाक तदफीफ है इंसानी मामलात में। हम लोगों के मामलों में बहुत कमी पेशी करते हैं, हकूक लबाद की कमी। हर रिश्ते को लिखिए आज जाकर, या भी लिख लें, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एक माँ होने के नाते बहन, और इसी तरह से बीवी, माँ, बहू, सास, नंद, जितने भी रिश्तों की डोरियों में आप और मैं बंधे ना, उन सब के अपने आप को बीच में लिखें, फिर इधर अपना आगे लिखें बहन, तो अपने भाइयों बहनों के नाम लिख लें, फिर ऊपर लिखें तो माँ, بیٹی ہو تو ماں کے باپ کا نام لکھے، پھر ساس، ہر رشتے میں رکھ کر خود کو سوچے کیا میں اپنے رشتوں سے انصاف کرتی ہوں، اور اگر آپ کی بات آسان کروں نا تو دو رشتوں میں اپنے آپ کو چیک کریں، ایک طرف آپ کے نسب کے رشتے اور ایک طرف آپ کے سحر کے رشتے. رضاعت ہمارے کلچر میں ہے ہی نہیں ہے، اس کو نہیں ہم ڈسکس کرتے، لیکن تین ہی قسم کے رشتے ہوتے ہیں، خون کے، سگے جو آپ کے میرے سلبی رشتے ہیں، اور نسب یعنی رضاعت کے دودھ شریک ہیں جو، اور تیسری چیز جو ہے وہ سحر سسرال کے. سچ بتائیں، آپ کہتے ہیں سسرال لفظ قرآن میں موجود ہے؟ جی آپ کہیں انہیں بالکل ہی نہیں پڑھنا قرآن، یہ اس میں بھی آ گئے. لیکن یاد رکھیے، کیا ہم میکے اور سسرال کے لیے ایک جیسا سوچتے ہیں؟ میری ماں اور میرے شوہر کی ماں، کیا وہ دونوں عورتوں کے جذبات ایک ہی جیسے؟ میرے شوہر کا میرے میکے کے ساتھ تعلق اور میرا اپنے سسرال کے ساتھ تعلق کیا ایک جیسا؟ یقین کریں قیامت کے دن سب نے اس پرچے میں پھنسے ہونا. جیسے عام طور پہ لوگوں کی وہ سپلی آتی ہے تو کس میں آتی ہے؟ ہم جب پڑھتے تھے تو یا میتھ میں آتی تھی لوگوں کی یا سائنس میں آتی تھی، فیل ہو جاتے تھے، باقی سبجیکٹس میں پاس ہوتا. سارے پرچوں میں سے سب سے مشکل پرچہ انسانی معاملوں کا پرچہ، رشتہ داریاں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن صلہ رحمی جا کے عرش کا پایا پکڑ لے گی. کیسے پکڑے گی؟ بس ہم مانتے ہیں، اور کہے گی کہ اللہ اس نے رشتے کاٹے، اس نے رشتہ کاٹا. اللہ فرمائے گا جس نے تجھے کاٹا آج میں اس کو کاٹوں گا، اور جس نے تجھے جوڑا آج میں اس کو جوڑوں گا. تو بس ہینٹ ہی دے سکتی ہوں اس وقت، ہم سب گھر جا کر سوچیں، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی دکھے تو کیا کریں؟ ریئلی اٹس ویری ایزی، پہلے کنفیس کریں، اقرار کریں کہ میرے سے کمی بیشی ہوئی ہے، اور اگر پہلے ہوئی تھی اب نہیں ہے، پچھلا وقت تھا، تو اس کو کنفیس کریں. اگر وہ بندہ زندہ ہے جس کے حق میں کمی بیشی ہوئی ہے، اوپنلی کھلے دل سے چلے جائیں کہ مجھے معاف کر دیں. یہ جو ہم نے ایک رسمی جملہ بنایا نا، کہا سنا معاف کرنا، اس میں بات نہیں سمجھ آتی. آپ کہے کو کہیں، غیبتیں، چگلیاں، تاندیں، سب معاف کرنا. بات سمجھی؟ ہم دوسروں کو اگر نہیں پوچھیں گے، یاد رکھیے کہ دوسرے تو بھولے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ یہ میدان حشر ہے اور یہ جہنم ہے اور آگے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت بھی دینی ہے نا، ان کو بھی جہنم کے اوپر سے ہی گزارنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پل صراط جو ہے نا، اس کا بالکل لاسٹ ایج آپ ایسے سوچیں کہ اس کا سٹارٹنگ ایج جو ہے نا، یہ میدان حشر میں، اور ادھر سے آپ ایک آرک بنائیں تو آخری کونا جو ہے نا وہ بالکل جنت کے پاس ہے، یہ نیچے جہنم ہے. چلیے تصور میں آتا ہے نا، سارا پل صراط کراس کر چکا ہوگا بندہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ پل صراط سے پہلے ہی فیصلے ہو جانے ہیں، آگے ہم پڑھیں کہ کون کس کی جنت میں نام لکھا اور کس کا جہنم ہے. لیکن بالکل آخری کونا، جہاں سے بس اب کہنا چاہیے، جس کو آپ فون پہ کہتے ہیں جہاز اتر آیا، بس باہر آنے والی ہوں، اور وہیں پکڑے گئے کیونکہ سامان زیادہ تھا اور کسٹم لگ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہاں وہاں لوگ روکے جائیں گے. اس جگہ کا نام ہے قنطرا، قاف نون تویرا، قنطرا. فرمایا ادھر حقوق العباد کے فیصلے ہوں گے، وہاں لوگ کھڑے ہوں گے، ہم سے حساب لیں گے. اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کون مفلس ہے؟ کہا جس کے پاس درہم دینار نہیں، یعنی منی نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہے، پاؤنڈز نہیں ہے. کہا نہیں، ان مفلس ہو من امتی، میری امت کا مفلس شخص، یعنی مفلس سمجھتے ہیں ہینڈ اپ ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا. اللہ تعالیٰ ان سب کو بلا کر آہستہ آہستہ اس کو کہیں گے، اب حق کیسے دوستنگ کی کیا ہے. ایک جملہ لکھ لیں بڑا سا آج کا جم ہے، قیامت کے دن کی کرنسی نیکی ہے. جیسے امریکہ میں جائیں تو ڈالر چلتے ہیں نا، یہاں کی عام دکانیں آپ سے کرون لیتی ہیں، آپ پیرس چلے جائیں گے تو یورو چلے گا، سب کو ہی پتا ہے پاکستان میں روپے ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفک چیزیں اسی ملک کے ہی کرنسی میں ہوتی ہیں. قیامت کے دن اگر آپ کو مجھے کچھ بھی بائے کرنا ہے تو جو کرنسی چلے گی وہ نیکی ہے. اب لوگ آگے حساب لے رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کہا اپنی نیکیاں دو، وہ اپنی نیکیاں دے گا. آپ ذرا سوچیے، مشکل نمازیں، تہجدیں، لمبے روزے، اور بہت کچھ صبر کیا ہوا، کسی بات پہ برداشت کی بھی، وہ ایک ایک کر کے ساری دے گا، اور وہ لوگ خوشی خوشی جائیں گے، کہیں گے اور ہی گالیاں دے دیتے تاکہ آج ہمیں اور نیکیاں ملتی. اتنے میں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور اب لوگ تو اور بھی آ رہے ہیں، کیونکہ زبان کا بڑا تیز تھا، معاملہ بڑا خراب تھا، اور جب تک کسی سے معاملہ نہ پڑے آپ جان ہی نہیں سکتے وہ کون ہے. حضرت عمر کے سامنے کسی نے کسی دوسرے کی تعریف کی تو کہنے لگے تم اس کی تعریف کیسے کرتے ہو، کیا وہ تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے، نیبر ہے؟ کہا نہیں. अच्छा ये बताओ कि कभी तुमने उसके साथ सफर किया? क्योंकि सफर में बंदा बहुत खुलता है। कहा नहीं वो भी नहीं किया। कभी उसके साथ कोई लेन देन किया? कहा वो भी नहीं किया। कहा फिर चुप हो जाओ, क्योंकि इन तीन मौकों पे पता चलता है बंदा असल क्या है। यहाँ तो हम सारे बड़े अच्छे बैठे हैं, ड्राइंग रूम मैनर्स तो सबके बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन असल बात लोग हैं, इसके ऊपर सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल पेपर है। बाहर हाल जब लोग और आएंगे और नेकियां ख़त्म, तो अब कहा जाएगा लाओ इनके गुनाह पकड़ो और इस पे डाल दो। आपने फरमाया जहाँ थोड़ी देर पहले नेकियों का ढेर था, अब वहाँ गुनाहों का ढेर होगा जो दूसरों को उसको मिलेगा, और उसको उसके बाद जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिए, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है वक्त में। लेकिन ये तो ऐसा मौजू है कि सिर्फ इस एक मौजू पर बात करने की ज़रूरत है। एक वाक्य सिर्फ सुना के इसका एक थर्ड एंगल देती हूँ आपको इंशाल्लाह। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि बेगम मैं अपने घर वालों को खाने पे दावत दे चुका हूँ 2 दिन बाद की, तो तैयारी कर लेना। तो बेगम को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, चुप हो गई, देखेंगे। खैर किस्सा मुख्तसर, वो वक्त आ गया जिस दिन था। सुबह भी वो कह कर गया कि आज अच्छा खाना बना लेना। जब लोगों को बुलाया हुआ था उसे 1.5 घंटा पहले, जब शौहर साहब घर आए तो देखा कि ना घर में कोई हाल हुलिया ऐसा है कि मेहमानों को वेलकम किया जाए, और खाना देखा तो ऐसे ही था। कहा क्या हुआ, तुमने खाना नहीं बनाया? कहने लगी घर के ही तो लोग हैं जो पका हुआ खा लेंगे। पहले भी उसने एक दो दफ़ा यही जुमला बोला, अपने ही तो हैं, अब उनके लिए क्या किया जाए। मियाँ को गुस्सा आया, कहने लगा कि तुम मेरे घर वालों की इज्जत नहीं कर रही, मैं जा रहा हूँ। वो नाराज़ होकर घर से चला गया। तो कहती हाँ ऐसे ही है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर गुजरी तो बेल बजी। क्या हुआ होगा, जब बेल बजी तो उस औरत के अपने महके वाले आ गए, बाप भाई फैमिली सारी। अब उनको देखकर एकदम घबरा गई। उसने सोचा ऐसे ही आए हैं। कहा मियाँ किधर है? कहा वो कहीं काम से चले गए। कहा काम से चले गए, हमें दावत दे के खुद काम पे चले गए? अब बेगम को समझ आई कहानी कि वो मेरे अपने नहीं इनको बुलाया था। खैर शौहर को फोन करती, आप किधर है? उसने कहा मुझसे बात नहीं करो, आपने बताया क्यों नहीं आपने मेरे घर वालों को बुलाया? उसने कहा अपने ही लोग हैं, जो घर में रहा है वो खिला दो, आपको पता है जो खाना घर में है वो मेरे घर वालों के लायक नहीं है। बस समझ ही गए, अब आगे तो बात समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यकीन करें कुछ औरतों ने अपने शौहरों की जन्नत बड़ी मुश्किल की हुई है। अल्लाह मुझे आपको ऐसा ना करे। देखिए आप बहू हैं, आप नंद हैं, आपका कोई हक नहीं पीछे कर दे, आप कहते हैं जी हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन याद रखिए कि वो आपके शौहर की जन्नत है। कभी अपने शौहरों को उनके माँ बाप से दूर ना करें, और उसकी खैर भी आप ही लेंगे। आपकी सास अपने बेटे को दुआ देगी ना कि बेटा तुझे अल्लाह लंबी उम्र दे, तो वो किसको दुआ लगी? आपके शौहर को लगी। आपका घर आबाद रहेगा। आपकी सास अपने बेटे को दुआ देती है, बेटा अल्लाह तुझे बड़ा रिस्क दे, तो वो रिस्क की चाबियां और मालकन कौन होंगी? चेकबुक किसके नाम होगी? आपके नाम होगी। तो बस इन रिश्तों में केयरफुल रहे, दिल बड़ा रखें, जुबान छोटी रखें। ये टूटते हुए घरों को जोड़ने वाला मरहम है। यकीन करें कि जितनी मादा परस्ती बढ़ी, मटीरियलिज्म बढ़ा, उतने रिश्ते कमज़ोर हो गए। और सास से मोहब्बत करने की सिर्फ एक वजह काफ़ी है, सिर्फ एक वजह, कि वो आपके शौहर की माँ है। वो औरत ना पैदा करती, और वो ना उसको साफ रखती, और ना उसको खिलाती पिलाती, और उसके लिए कितनी सुबह जागी, तो आज वो आपके काबिल तो ना होते ना। तो बहरहाल इस पे भी तथफीफ में गौर व फिक्र की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ तथफीफ जो हमारी आम लोगों में होती है, मसलन 10 साल की उम्र के बच्चे का टिकट फ्री है, और आपका बच्चा माशाल्लाह 11वें में बस 2 माह पहले ही लगा, तो क्या करते हैं? सबको पता है, और उसको उठा लेंगे। देखो वो अभी तो छोटू है, सिर्फ थोड़ी सी पैसे, और वो PIA और जो जो एयरलाइंस में टिकट है इन्फेंट और छोटे बच्चे, सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठे वीज़े, और तथफीफ की क्या कहानियाँ सुनाऊँ। माली मामलात, क्या माशरती मामलात, देखिए इस मुल्क की भी चंद बातें करूँ, है कड़वी बुरी लगती हैं लेकिन सच है। सिक मेल, झूठी सिक मेल, ये तथफीफ है। उन्होंने अगर एक सहूलत दी है तो उसको अगर आप वाकई रियली डिजर्विंग है तो आपका हक है, आप टैक्स पे करते हैं, इट्स फाइन। लेकिन झूठ बोल के आपसे साइन करवा के कोई कहता है कि जी मुझे सिक मेल दे दीजिए, ये जुल्म है। झूठे वीज़े, झूठे पासपोर्ट, झूठी एंट्रीज, घर बैठे आराम से काम खुद कर रहे हैं कहीं और गवर्नमेंट बेचारी कब से पैसे दे रही है। और मैं ऐसी भी कहानियां सुन चुकी हूँ रियली, कि क्राइसिस सेंटर की कई साल की औरत जो कई सालों से गवर्नमेंट के टुकड़ों पे पल रही थी, अल्लाह ने रिहैबिलिटेशन कर दी, मियाँ के घर चली गई, लेकिन उसने नौब को नहीं बताया। उधर से भी खा रहे हैं, इधर से भी ले रहे हैं। तो फिर वो घर भी तो टूटना ही था ना, फिर वो अगला भी टूट जाता। क्यों टूटता? क्योंकि अल्लाह को पता कि आप तदफीफ कर रहे हैं। एयरलाइन है 20 kg अलाउड है, अब आगे मैं नहीं बोलती। और अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं PIA पे, तो मैं कहती हूँ जितने PIA के गुनाह माफ होते हैं उस वक्त हमारी बातों से। ये नहीं कहना कि शॉपिंग बड़ी कर ली है, ये नहीं कहना बाजारों में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजार आई हूँ पाकिस्तान। क्या कहते हैं मकड़ो के, एयरलाइन वाले बड़े बुरे हैं, ये गुंजाइश नहीं दे। सिर्फ 45 किलो, आप अपना वजन करें और उसका वजन करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरा हाल हर एक को ये कह दें कि तुम अपने वजन के बराबर का वजन लाओ, तो फिर मोटे लोग ज्यादा ले आएंगे। अपनी खुशी से कोई छोड़ दे ना 19-20 किस होके, लेकिन छुपाना, झूठ बोलना, और कभी इधर छुपा और कभी उसको कह और कभी उधर रख, ये तदफीफ है। अल्लाह आपको मुझे बचाए, क्या पता क़यामत के दिन एयरलाइन कंपनियां खड़ी हों लाइन में। ये आज की क्लास का अजर तो मुझे दो ना, हम लेके जाते हैं। बस आप समझ गए, आप इसकी 101 लिस्ट बन सकती है। मैंने ये तफसीर से जब पढ़ाई थी, मुझे याद नहीं है पॉइंट्स, आज तो मेरे लिए हमने 15-20 ही किया है। 101 पॉइंट इस एक आयत में से निकल सकता है कि हमारी इंसानी मामलात में कमी बेशी का। एक दो और बता देती हूँ। पैसे पूरे लेने, जॉब आवर्स काम ना करना, चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपनी बस नाम वहाँ अटेंडेंस लगवा दो। इन मुल्कों में तो करने कोई नहीं देता, पकड़े जाएंगे। टैक्स चोरी करना क्या है? तदफीफ है। और कीमतों का आगे पीछे करना तदफीफ है। और एक तदफीफ बताओ, सच बताऊं, माइंड तो नहीं करेंगे, ये दुल्हन का जोड़ा कितने का आया? बस सिर्फ 5 लाख का सिर्फ। अच्छा, बाद में वो बेटी बोलती है अम्मी नहीं, ये तो 3 का आया था, तो भी उसे कहा तो 5 का ही था ना। यानी एक बच्ची ने मुझे खुद ये बात सुनाई कि माई मॉम माई, आप कहेंगे ये मुझे ही सारे बातें क्यों सुनाते हैं। तो एक बच्ची की बात है, कहने लगी मेरी अम्मी हमेशा दूसरों को वो कीमत बताती हैं जो शुरू में चली थी, वो सारी बार्गेनिंग नहीं सुनाती कि असल में कितने पे मुखमका हुआ था। तो ये मौजू तो बड़ा तल्ख हो जाएगा अगर मैंने शादियों की तदफीफ बता दी। तो इतना सा टाइम स्लॉट है अनिकाह मिन सुन्नति का, मौलवी साहब आते और वो दुपट्टे ना हो तो वो टिश्यू पेपर सरों पे रख लेते हैं हम सारे, और मर्द भी रुमाल निकाल के मुंह पे रख लेते हैं, चले जी कबूल है कबूल है। इतना सा मेरे हाल 5 मिनट का स्लॉट होता है शादी में, जिसके ऊपर है निकाह हो मिन सुन्नति, तो फिर 5-6 दिन पहले और 6-7 दिन बाद के मामले क्या हैं, ये तदफीफ है, ये इसराफ भी है। आप खुद समझ गए होंगे कि ये कैसी खौफनाक बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यौम यकूम अन्नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे उस दिन जाके सारा बैगेज अलाउंस चेक करवाना पड़ेगा।
कल्ला इन्न किताब अल-फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम مرقوم ويل يومئذ للمكذبين
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين خبردار بی کیئرفل اللہ ہم سب کو الرٹ کر رہے ہیں ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا وما دراک اور تمہیں کیا پتا یعنی ہاؤ ڈو یو نو माँ सिज्जीन, सिज्जीन क्या है? किताबु मरकूम, एक किताब है लिखी हुई। वैलु यौम इज़िल्लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है, तबाही है उस रोज़ छुटलाने वालों के लिए। किसको छुटलाते थे? अल्लज़ीन युकज़्ज़िबून बियौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन को छुटलाते थे। क्या कहते थे क़यामत को छुटलाने में? ये तो नहीं कहते थे कि नहीं आनी, कहते थे कि देखा जाएगा। जरा सा कोई डराने लगे कहते बस डराते बहुत हैं, और जरा कोई गुनाह सवाब का फर्क बताए तो कहते थे बहुत जजमेंटल है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत सख्त बात करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनका क्या ख्याल था कि अगर क़यामत आ भी गई तो हमें वहां भी VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। हम बड़े लोग हैं, हमें दुनिया में कितनी इज्जत मिलती, कितने तो सल्यूट होते हैं हमें, वहाँ भी मिलेंगे। और कोई क़यामत श्यामत नहीं, ये मौलवियों ने बना लिया। यकीन कीजिए, आज का नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम ये लफ्ज़ बोलता है, मुल्लास, तालिबान्स और मौलवीज, यकीन करें ये लफ्ज़ गाली बन चुके हैं। किसी को डिग्रेड करना हो ना, लेट डाउन करना हो ना, तो ये दो चार लफ्ज़ हैं हमारे माशरे में। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को फिर मैं सिज्जीन में रखूंगा, वमा युकज्जिबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम, और नहीं झुटलाता इसको मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। पहली सिफत लिखिए, कौन जाएंगे सिज्जीन में, और अभी इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी, यानी जहन्नुम के दफ्तर सिज्जीन में किनकी रूहों को बंद किया जाएगा। नंबर एक, जो क़यामत के दिन को झुटलाता है, और वो हद से गुजरने वाला, ट्रांसग्रेशर कह लीजिए कि बहुत हद से गुजरने वाला, असीम गुनागार। और इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती थी, यानी जब उसको अल्लाह की आयतें कुरान सुनाया जाता था, काला असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों की कहानियाँ, ओल्ड डेटेड, क्या पढ़ रहे हो तुम, 1400 साल पुरानी किताब। यानी उसका ख्याल था कि कुरान आज के दौर के तकाजे नहीं समझता, नाउज़ बिल्ला, और इन मौलवियों को क्या पता है कि आज हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे जो नेकी की खूबी चली गई ना, उसकी वजह क्या है, कल्ला, हरगिज़ नहीं। और कल्ला इंग्लिश में जैसे नेवर है ना, ऐसे एक होता है नो, ये भी नो है, इसमें इतनी शिद्दत नहीं होती, नेवर में बहुत है। एक आए अपने बच्चे को, आप कहते हैं नो, बच्चे को पता चलता है थोड़ा सा जोर लगाऊंगा माँ मान जाएगी, और अगर आप कहते हैं नेवर, तो फिर बच्चा चुप कर जाता, नहीं माँ का मूड नहीं है। यहाँ नेवर का लफ्ज़ है, बल्कि रान आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे आमाल का जंग चढ़ गया है, रस्टी हार्ट, दिलों पे जंग पड़ा हुआ है, और वजह जो बुरे काम किए। ये क्या होता है, देखिए दिल पे जंग कैसे पड़ता है, आप सब जानते हैं, बचपन से हम भी देखते आए, लोहे की चीज़ बाहर पड़ी रहे, अगर उसमें थोड़ा सा पानी लग जाए, खुश्क हो जाए ना हो, तो वो जंग लग जाता है और खा जाता है लोहे को। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि इंसान जब गुनाह करता है, हो ही जाता है ना गुनाह, जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं ना, भूल चूक, उसको अल्लाह इतना मैटर नहीं करता है, इट्स ओके, हो गया, ठीक हो जाएगा, मट्टी लगी पाँव में, आगे थोड़ा चलेंगे उतर जाएगी, इट्स ओके। बस ये जो 5 नमाजें हैं, ये छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह के हुक्म से अरेज करती हैं, लेकिन वो गुनाह जो जान के किए जाए, और प्लैंड गुनाह, पहले से ऑर्गेनाइज करके गुनाह किया जाए, ये ईमान वाले की ज़िंदगी में नहीं होते हैं। अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक गुनाह किया तो दिल पे एक काला नुक्ता, अगर आप वाइट बोर्ड को सामने रखें, अगर मैं यहाँ उठकर एक ब्लैक डॉट लगाऊंगी ना, आई एम श्योर कि आप में से ये दूसरी लाइन के बाद भी किसी को नहीं दिखेगा। फरमाए दूसरे गुनाह पे फिर काला धब्बा, तीसरे पे, चौथे पे, और गुनाह करते करते फरमाए कि एक वक्त आता है कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। ये है कल्ला, बल राना अला कुलूबिहिम,
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ।
और इसकी पहचान क्या है, ऐसे लोगों का किताब से दिल नहीं लगता, दीन की बात सुन के उनको इरिटेशन होती है, उनको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, वो कहते हैं नहीं नहीं बस नमाज ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इट्स टू मच। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये लोग सारी ज़िंदगी अल्लाह के सामने नहीं खड़े हुए, हुए भी तो वो रस्मी नमाज थी, और किताब से तो डरते रहे, चूंकि दुनिया में इन्होंने अल्लाह की किताब, अल्लाह के दीन से हिजाब किया ना, तो कोई बात नहीं, कल्ला इन्नहुमा रब्बिहिम यौम इज़िल लमहजूबून,
कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौम इज़िल लमहजूबून,
हरगिज़ नहीं, बेशक वो उस दिन अपने रब से पर्दे में होंगे, रब की दीद से महरूम रहेंगे। ज़रा से इस पे गौर करेंगे, आप में से हर एक की ख्वाहिश होगी कि अपने रब को देखे, क्यों ना हो। मैं तो जब ये बर्फ़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह अपनी झलक भी तो दिखा, तू कितना प्यारा है, इन अल्लाह जमील और युहिब्बुल जमाल। ईमान वाले की सारी ज़िंदगी दो ख्वाहिशात होती हैं, नंबर एक जन्नत, और दूसरी अल्लाह का दीदार। और ये ऑथेंटिक बात है, क़यामत के बाद अहले ईमान अल्लाह सुबहान तआला को देखेंगे, और कैसे देखेंगे, चांदनी रात थी, नबी सल्लम भी बैठे हुए थे, सहाबा भी थे, और क्या ओपन एयर में उनकी क्लासेस होती थी, तो कहते हैं कि चांद को देखा, अल्लाह के नबी का चेहरा चमक रहा था, سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ تھا اللہ کے نبی کا. صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ یہ سوال کس کے دل میں اٹھتا ہے؟ جس کو محبت ہے. دیکھیے آپ کا بھی کوئی فیوریٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ خاتون ہیں اور کسی خاتون کی اچھی بات سنتی ہیں، کہیں آپ نے ریکارڈنگ سنی، آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو دیکھوں. آپ مرد ہیں، آپ کا دل کر سکتا ہے آپ کسی میل ٹیچر کو دیکھیں، اگر آپ کا اچھا ملان ہے، امام کعبہ کو ملیں، امام شاری راشد کو دیکھیں، فطری سی بات ہے. اور جو کرکٹر سے محبت کرتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کرکٹرز کو دیکھیں. ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، جس سے دنیا میں محبت ہے نا آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے. اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا ہاں تم دیکھو گے. پھر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے کہا تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے اس وقت چاند کو دیکھ رہے ہو، اور بیچ میں کوئی بادل نہ ہو، اور تمہارے اور اس کے بیچ میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، لینگویج بیریئر نہیں ہے. جنتی جب اللہ سے بات کریں گے، ملیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں لے لے جنت کی، ایک بار اپنا دیدار کروا دیں. جنت کا جو کلائمیکس ہے نا، ٹاپ موسٹ، جیسے آپ دیکھیں نا ہر جگہ کے کچھ کچھ، یہ فرنٹ رو سیٹ ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ اکانومی ہے، ہر چیز ہوتی ہے نا، جنت کا جو ٹاپ موسٹ ایریا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ہے، جنت الفردوس. لیکن اللہ کہتے ہیں میں ایسے سینرس کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم، جاؤ. تمہیں دنیا میں اچھا نہیں لگتا تھا میرا ذکر، میری جگہ، میری باتیں، آئی ایم ناٹ اویلیبل. اور دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کتنے بھی مصروف ہوں، آپ کا من پسند بندہ آ جائے یا بات کرے یا کرنا چاہے، گنجائش نکال ہی لیتے ہیں آپ، اور جس سے کچھ لینا نہیں دینا نہیں، آپ کہتے ہیں سوری میں آپ سے بات کر تو لوں لیکن میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس دن میں نہیں دکھوں گا. ثم انہ لسوال الجحیم، پھر اس کے بعد وہ جہنم میں جا پڑیں گے، یعنی پھر دھکا مار کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ثم پھر یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم میں کھڑا کر کے کیا جا رہا ہے دیکھو یہ ہے، تم اس کو ڈینائی کرتے تھے. اور آج یقین کیجئے لوگ جہنم کو ڈینائی کرتے ہیں. جنت کی بات ہو تو کہتے اٹس اوکے، ہو گئی، یس یس، اور جہنم کی بات کرے کہتے بس چپ چپ، آئی ہیو ٹو گو. اللہ کہتے یہ جہنم، دس از دا تھنگ. جیسے آپ دیکھیے بچہ بہت تنگ کرے نا، تو جب ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو وہ سزا دے کے کہتے منع کر رہی تھی نا، اب میں تمہیں بند کرتی ہوں اس کمرے میں. تو اللہ جہنم میں دکھا کر ان کو گرا کر کہے گا اب دیکھو کہاں گئے. یہاں بے تصویر کا ایک رخ پورا ہوا. دعا کیجئے اللہ ہر اس چھوٹے بڑے گناہ سے بچائے جو جہنم میں گرائے اور جو اللہ کی دید سے محروم کرے. میں ایک کچھ چھوٹا سا سینٹیمنٹل سا جملہ بول سکتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. آپ میں ناروے میں رہتے ہیں، سال کے بعد جاتے ہیں پاکستان، جائیں بھی اور اپنے کسی پیارے کو نہ دیکھیں. ماں کہتے چلی جاؤ میں نے شکل نہیں دیکھنی، باپ بات نہ کرے، بہن بھائی دیکھے نا، کیسا ہوگا وہ ٹرپ آپ کے لیے؟ میرے لیے وہ جنت جنت ہی نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، سٹیپس ہیں. آج سے یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. بڑی پیاری دعا ہے، حسن المسلم میں بھی موجود ہے، کہ اللہ میں آپ کے دیدار کی محبت چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو سی. اور اس وقت جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی جب اللہ کو دیکھیں گے. انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات ہوگی. اب یہاں سے دوسرا رخ ہے. اتنی بات بتا دوں کہ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نا سول چلی گئی، باڈی تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، کچھ دن رکھ کر ہم اس کے کچھ ریچولس کر کے اس کو یا دفنا دیتے ہیں یا جو بھی کرنا ہوتا ہے. یہ روح کدھر جاتی ہے؟ جرنی آف دا سول کیا؟ یہ آج وہ باتیں ہو رہی ہیں. برے لوگوں کی، بد لوگوں کی، سنرز اور جو بھی جس طرح کا درجہ نا، ان کی روحوں کو سٹور کرنے والی جگہ کا نام سجین ہے. اور سجین کا لفظ سجن ہے. سجن کس کو کہتے ہیں آپ؟ پریزن، جیل کو. اس شہر میں بھی جیل ہے نا. ساری زندگی کھلا پھرا وہ بندہ، اب جسم اس کا چلا گیا قبر میں، روح اس کی سجین میں چلی گئی. اب اس کا اپوزٹ دیکھیے گا، دوسری تصویر. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتروں میں ہے. یہ بھی ایک پلیس ہے، علیین، الف کہتے ہیں بلندی کو، ٹاپ، ہائی موسٹ. وما ادراک ما علیین، اور تمہیں کیا پتا کہ علیین کیا ہے، یعنی یہ کون سی جگہ ہے، یعنی تم اس کی خوبصورتی نہیں جانتے. اور किताबु मरकूम, ये भी लिखी हुई एक किताब है। यशहदुहुल मुकर्रबून, और वो क्या है, जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं, यानी यशहदुहुल मुकर्रबून, करीबी फरिश्ते वहाँ उस रूह की हिफाज़त के लिए मौजूद होते हैं। इन्नल अबरार लफी नाइम, बेशक नेकियां करने वाले नेमतों में होंगे। अलल अराइकी यंजुरून, इमेजिनेशन में लाइए। अल्लाह ताला कहते हैं उसकी रूह को हम इल्लीजीन में रखते हैं, तो इल्लीजीन क्या है, सिज्जीन का अपोजिट। और यहाँ एक बात सिर्फ आपकी इंटरेस्ट के लिए बताऊँ, सिज्जीन किधर है, ज़मीन के नीचे, और इल्लीजीन किधर है, ऊपर। ऊपर जन्नत है, आज भी है जन्नत, जन्नत का दफ्तर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने कराने की जगह इल्लीजीन, और सिज्जीन नीचे है, जहन्नुम भी नीचे है, इस ज़मीन के नीचे जहन्नुम है, इसके प्रूफ भी मौजूद है आज। अल्लाह नोस दी बैस, कब होगा दुनिया में, शायद वो दुनिया में भी उसकी कुछ ना कुछ हवा आने लगे। जैसे डॉक्टर नाम लिख लेती है ना, कहते हैं आई आपका एडमिट करते हैं, तो अब रूह वहाँ लिख ली, आप असल में क्या होगा जब जन्नत में जाएंगे, इंजॉय कीजिएगा अपने तसव्वुर से। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल अबरार लफी नाइम, नेकियां करने वाले नेमतों पे होंगे, जन्नत का एक मुकाम भी है नाइम। अलल अराइकी यंजुरून, तख्तों पर बैठे नज़ारे कर रहे होंगे। अपने आप को ले आप, हर एक अपना नाम लिखे इधर, अबरार में आप खुद हैं, और अल्लाह आपको मुझे अबरार में शामिल कर दें। बड़ा खूबसूरत सा आपने ड्रेस पहना हुआ है क्वीन, और मसनद, जैसे तख्त होते थे ना पहले दौर में, अरीका कहते हैं दुल्हन का बिस्तर, आपने लफ्ज़ सुना है छप्पर खट, दुल्हन की जो मसहरी है ना उसको अरीका कहते हैं, यहाँ उसकी जमा आई है अराइक, यानी अल्लाह ताला उनको बड़े खूबसूरत तरीके से वहाँ बिठा देंगे, और बड़े खूबसूरत ऐसे ऊंचे हाई राइज जैसे के तख्त होंगे। तारीफ़ फ़ी वजूह हिम नदरत नईम, और तुम देखोगे उनके चेहरों पर खुशहाली की रौनक। देखिए ये तो आप और मैं भी जानते हैं कि बंदा खुश होता है ना तो चेहरे पे चमक आ जाती है। बंदा कहता है ये क्या लगा, लोग कहते हैं क्या क्रीम लगाते हैं, ये फेशियल कहाँ से कराते हैं, ये नेकियों का फेशियल, ये वजू का पानी, ये सच्चा दिल होना। क़यामत के दिन जन्नतियों के चेहरों पर एक चमक होगी, और सच्ची बताऊँ काम करने की खुशी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माई जॉब। ईमान वाले को हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि आज तो कुछ कर ही रहा हूँ, पता नहीं मरते वक्त क्या करूँ, मेरा इंजाम ना बुरा हो जाए। ऐसे ही दोस्तों की मजबूरी पे कहीं चली गई, वहीं जान चली गई, फिर क्या होगा। और हदीस में आता है बंदा जहाँ मरता है जिस हाल में उसी पे उठेगा क़यामत के दिन। कोई हजी हज के दौरान मर गया तो लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा, शहीद मरागा तो ऐसे निकलेगा उसके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू होगी, और फरमाया कोई जिना करते हुए मर जाए तो वो जिना करते हुए उठेगा। सही हदीस मौजूद है, तो छोटा सा गुना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट 3 आवर्स, 2-5 मिनट भी हो सकते हैं, अगर उधर जान चली गई तो क्या होगा। लेकिन जब काम किया हुआ का बड़े खुश हैं, युस्कौन मिन रहीक मख्तूम, और पिलाए जाएंगे वो नफीस तरीन सरबन शराब, जिस पर मुश्क की मोहर होगी। देखिए यहाँ शराब की बात है, आम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन चूंकि लफ्ज़ शराब का आता है तो फिर बताने की ज़रूरत है। शराब किस चीज़ से बनती है, आम तौर पे तो फ्रूट से बनती है ना, बहुत ज़्यादा जो अरब लोगों में शराब थी वो अंगूर और खजूर की थी। अरबी ज़ुबान में मशरूब और शराब, पीने की चीज़ को कहते हैं ड्रिंक। ये जो आज की शराब है ना, ये गली सड़ी है, स्मेल कितनी बुरी है, और वहाँ देखिए खिताम हो मिस्क, खिताम कहते हैं खुश फ्रेग्रेंट खूबसूरत, और मिस्क वो इतनी सी, आप अगर हिरन के पेट में से मिस्क निकालें इतनी सी होती है, और वो बहुत महंगी होती है। वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हैं तो फिर उनको इसमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रा सा रुकिए, कॉम्पिटिशन करना है ना तो फिर इस पे करो, किस पे, अबरार नेकियों पे। आप पता है कि शीप की आदत है कि ऊपर जाते हुए अगर एक का पाँव फिसल जाए तो बाकी खुद को फिसला देती हैं। जो एक करेगा सबको करना है, जिधर एक जाएगा सबने जाना है, भेड़ चाल। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि ज़रा एक सवाल का जवाब तो दो, उसको मैथ सिखा रहा था, कहने लगा कि एक पहाड़ी है और उस पर 100 भेड़े हैं, उसमें से एक गिर गई नीचे तो पीछे कितनी रहेंगी। अब क्या जवाब था, 99। तो शागिर्द क्या कह रहा है, कहता है एक भी नहीं रहेगी। कहते हैं निकम्मे नलायक बेवकूफ, तुम्हें हिसाब नहीं आता। फिर पूछा दोबारा, अच्छा दो गिर जाए तो पीछे कितनी रहेंगी? कहता कोई भी नहीं। कहने का तुम बिल्कुल नलायक हो, फेल हो जाओगे। कहने का तुम्हें हिसाब बिल्कुल नहीं आता, तुम नहीं सीख सकते। उसने कहा मास्टर साहब इट्स फाइन, थैंक यू। ये भी पता लग गया कि आपको शीप का नहीं पता क्यों। कहने लगा जूं ही एक गिरेगी ना बाकी भी गिरेगी। आज यही हो रहा है, बगैर सोचे समझे। लव्स ब्रांड क्या है? यही है। सच बताएं, डीटी लिखाओ, टीटी लिखाओ, बीटी लिखाओ, किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या कीमत है उसकी? 100 वाली चीज़ 1000 की है, लेकिन शौक है ना। तो लोग हमेशा दूसरों के पीछे चलते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि ये लोग जो वहाँ होंगे ना, अगर तुम चाहते हो ना कि यू विल फॉलो एनीवन, तो तुम इनको फॉलो करो। अल्लाह अकबर। व मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐनै यशरबु बिहल मुकर्रबून। इस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी, और ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पियेंगे। स्प्रिंग है, जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे, इंशाल्लाह मिल के चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। अब आप देखिए, ये सारा कुछ सुनने के बाद जहन में क्या आता है? मेरे जहन में तो फन प्लेक्स आता है। कोई काम नहीं है, मौज मस्ती, पहनो खाओ पियो उड़ो उड़ाओ। आपको क्या पता अल्लाह ने आपके लिए तैयार क्या किया, और क्या चीज़ें हैं जो बंदे की फिर तरजीहात को बदलती हैं? ये कोई दुनिया की चीज़ें हैं? पता ना हो तो पता ही नहीं चलता ये कीमती है कि महंगी है। सब एक जैसी होती हैं। जिसको लोग पकड़ लें वो महंगी है, जिसको कोई ना ले वो सस्ती, वो सेल पे आ जाती है, फिर भी कोई ना ले तो उसको फेंक देते हैं आउटलेट्स में। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं इसके बरक्स, अब आखिरी हिस्सा बहुत ही क्रिटिकल है। ये वो दौर था कि जो बंदा इस्लाम पे आता, अल्लाह के नबी का साथ देता, तो लोग उसका मजाक उड़ाते, और आज भी यही है, फन मेकिंग फन, मौलवी और मुल्ला और ये और वो और निंजा टर्टल, जो भी जो लोग कहते हैं। ये सारी बातें, ये सारे इल्ज़ाम जहन में रख के सुनिएगा। फरमाया इन्नल्लज़ीना अजरमु कानू मिनल्लज़ीना आमनु यदहकून। मुजरिम लोग, क्रिमिनल्स, दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। मैंने आज मौलवी साहब को खूब सुनाया, और दिस एंड दैट बड़ा मजाक करते थे। वैज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब उनके पास से गुजरते थे ना तो आंखें मारते थे, इशारा करते थे, कभी उनकी दाढ़ी को देख कर, कभी उनकी टखनों से ऊंची शलवार को देख कर। और फिर उसके बाद क्या करते थे? तीसरा स्लॉट, वैज़न क़लबु इला अहलिहिम क़लबु फ़कीहीन। और जब इनके पास से घर लौटते थे ना, तो मज़े ले लेकर उनकी बातें सुनाते थे। बेगम आज तो मैंने ये कर दिया, और आज तो मैंने खूब सुनाई। घर वालों की तरफ लेट लपड़ जब पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते। यानी सारी बात का खुलासा यह है कि ये लोगों का मजाक उड़ाते थे। और याद रखिए, जिसने अल्लाह की बात मानी उसका मजाक उड़ाया जाएगा। सबसे मुश्किल टेस्ट होता है लैब में एसिड, जब आप मुख्तलिफ तेजाबों के साथ खेलते हैं, वो जितना मुश्किल है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल ये है, इफ़ आई विल चेंज माई गेट अप पीपल विल मेक फन ऑफ मी। ये जुमला नहीं हमें अपने हाल हुलिये को बदलने देता। वल्ला ही अगर लोग हमें ना देखें तो हम फितरत के अतबार से हमेशा वैसे बनना चाहें जिसमें ईजी गोइंग, लेकिन शैतान दिल में डालता है लोग क्या कहेंगे, मासी और थर्ड क्लास और आउटडेटेड और जो भी कहेंगे। अब देखिए एंड पे क्या हो रहा है। वाइजा राउ हम कालून न हाउला इला दौलून। एक और कमेंट है, ये फोर्थ आयत है इसी बात के मुतल्लिक। और क्या, जब ये इनको देखते तो कहते ये भटके हुए लोग, बहके हुए लोग हैं, बस बहक गए, जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, ये हो गया वो हो गया। हालांकि वमा उर्सिलु अलैहिम हाफिज़ीन, ये कोई इनके ऊपर चौकीदार बनाकर तो नहीं भेजे गए कि इनकी हर एक्शन पे कमेंट ही दें। यानी अल्लाह ताला डांट रहे हैं कि ये ईमान वालों पर इतने कमेंट्स क्यों दे रहे हैं, इनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन असल बात क्या है, अब आखिरी दो आयतों को देखिएगा। फल यौमल्लज़ीना आमनु मिनल कुफ़ारी यदहकून। सीन चेंज हो गया, जो दुनिया में हुआ था ना वो देख लिया, और ये उस दौर में रियली हो रहा था सहाबा के साथ और अल्लाह के नबी के साथ, और आज भी होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन बदौ गरीबन, दीन अजनबियत से शुरू हुआ था। जो दीन पे आता लोग उसको अजनबी समझते, गरीब समझते, और एक वक्त आएगा दोबारा लोगों को दीन गरीब दिखेगा, स्ट्रेंजर्स लगेंगे लोग, क्या ये कौन स्ट्रेंजर, आटे में नमक के बराबर, छोड़ो। अब वहाँ क्या हो रहा है, फल यौमल्लज़ीना आमनु मिनल कुफ़ारी यदहकून। सुभान अल्लाह, आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे होंगे। कहाँ, अलल अराइकी, दूसरी बार लफ्ज़ आ गया, मसनदों पर बैठे हुए, यंजुरून, उनको देखेंगे, और अल्लाह ताला उनसे एक सवाल पूछेगा, हल सुव्वी बल कुफार उमा कानू यफालून, ये बताओ कि काफिरों को इनकी हरकतों का ठीक बदला मिल गया। आप इमेजिनेशन में लाइए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को, सबने कहानी सुनी भी है। हबशी थे, ब्लैक थे, उमैया इनका मालिक था। जब हज़रत बिलाल मुसलमान हुए तो जुल्म करता था, टॉर्चर करता था, मारता था, इतना बड़ा जल्लाद उनके ऊपर मुकर्रर करता था जो उनको विप्स मारता था, लेकिन याहद अहद बोलते थे कि इनकी माँ खुद भी मुसलमान हो चुकी थी लेकिन उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। एक दिन उमैया बिलाल की माँ के पास जाता है और कहता है, अपने बेटे को समझाओ क्यों मार खाता। खैर, माँ थी बेटे के पास आके कहती है, बेटा अल्लाह को पता है तेरे ईमान का, तू क्यों मार खाता। तो हंस पड़े, कहा हंसने की क्या बात है, कहा आज मुझे पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया हूँ। कहा वो कैसे। कहा अगर मुझसे हारा ना होता तो मेरी माँ को सिफारशी बना कर ना भेजता। तो याद रखिए, आप बिलाल ने जिन्होंने इतनी मारे खाई, तपती रेत पे लिटाए जाते थे, इनके जिस्म की चर्बी पिघल पिघल कर पत्थरों के ऊपर चिपक जाती थी, ये छोटी बात तो नहीं है। आज मैंने तो कर्टसी में आपने दौर देखा है, हमें तो कोई नहीं कुछ कहता, कह के तो देखे। फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम हर मुल्क में है, इस मुल्क में भी है आई एम श्योर, कोई आपके रिलीजन पे बात तो करे। उस दौर में ऐसी फ्रीडम नहीं थी। एक सहाबी जब ईमान लाए और किसी ने कहा कि कोई बात तो सुनाओ इस्लाम लाने की, तो कमीज उतार दी, कहा पीछे आके खुद ही देख लो। सहाबा ने उनको देखा तो चीखे निकल गई। समझाने के लिए कहती हूँ कि पीछे उनकी स्किन में इस तरह गड़े पड़े हुए थे जैसे अंडे रखने वाली जगह नहीं होती, पत्थरों पे लिटाते थे तो वहाँ गड़े पड़ जाते थे, और बाज़ के तो जख्म ऐसे थे कि हदीस में आता है कि बच्चे उंगलियां डाल डाल के उन जख्मों में खेलते। ये दीन इतने आराम से नहीं आया मेरे प्यारे नबी ने, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से पाँव में जूतियां चिपकाई हैं। आज हम मीठा मीठा दुरूद पढ़ते हैं, हम दुरूदो सलाम के बाद मीठे खाने खाते हैं। हमारे प्यारे नबी के ऊपर तो करोड़ों दुरूद और सलाम, जिन्होंने मुश्किलें सहकर भी, तकलीफें सहकर भी ये दीन मेरे आप तक पहुँचाया, वरना ये सूरत कहाँ आनी थी मुतफ़िफ़ीन। तो लिहाजा क़यामत के दिन अल्लाह बिलाल को एक तख्त पे बिठाएगा, शाही लिबास पहनना होगा, और नीचे अपनी रहमत से, आज तो मुश्किल ही नहीं समझना, सेटेलाइट कह लीजिए, कोई भी कह ले, जहन्नुम में जलता हुआ मैया नजर आएगा, और उसको जो कह सकते हैं वो जलता हुआ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा। जिन कुफार को अल्लाह के नबी ने कह दिया, बस उनको मैं और आप कह सकते हैं और किसी को नहीं। और जब उसको देखेंगे तो अल्लाह बिलाल को एक ऑनर देगा, हल सुवी बल कुफार उमा कानू यफालून, बिलाल जी आप बताइए वो मैया के लिए इतना ठीक है, आपका दिल ठंडा हुआ। देखिए, ईमान वाला कभी नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो, लेकिन ये तो आप और मैं मानते हैं कि मजलूम के सामने जालिम को जब सजा मिलती है तो एक सेटिस्फेक्शन तो होती है ना, कि मैं सच पे था, मैं हक पे थी। तो बहरहाल ये थी सूरत मुतफ़िफ़ीन। और आप देखिए कि सुनते वक्त हो सकता है आप में से किसी को कोई एक बात समझ आई हो, किसी को दूसरी। हम एक बार इसकी अब तिलावत सुनेंगे, क्योंकि पहली तिलावत वो थी जिस वक्त हमें ये कुछ नहीं पता था, राइट। उस वक्त हम सिर्फ अरबी जुबान के हुसन को देख रहे होंगे, क़यामत के दिन भी यही होगा। तिलावत सुनते हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हमारे दिल की खिड़कियां खोल दें।
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
الله أكبر كبيرا مجھے ایسے لگتا ہے کہ حقوق العباد سے لے کر اللہ تعالیٰ کے دیدار تک ہر چیز اس میں آ گئی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور اپنے لیے بھی یہی دعا کریں کہ مالک تو ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کی توفیق دے اور بہترین طریقے سے عمل کریں